एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतरने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, पर शायद ही उसे सही से समझा हो।
हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य युग की, मिडिल एजेस।
और जैसे ही ये शब्द सुनते हैं दिमाग में एक तस्वीर आती है, डार्क एजेस, है ना?
बिल्कुल, मतलब तलवारें, शूरवीर और हर तरफ जैसे पिछड़ापन।
हाँ, तो आज हम इसी सोच को चुनौती देने वाले हैं, और इसके लिए हमारे पास है मीरी रुबिन की किताब द मिडिल एजेस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये जरूरी भी है, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम जिन चीजों को बहुत आधुनिक मानते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज, हमारी पार्लियामेंट, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
हाँ, उसी दौर में जिसे हम अंधकार युग कहकर मतलब एक तरह से खारिज कर देते हैं, तो आज का हमारा मिशन है इस दौर पर जमी धूल को हटाना और देखना कि उस अंधेरे में असल में क्या चमक रहा था।
और इस सफर में हमारी गाइड हैं मीरी रुबिन। वो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मध्ययुगीन इतिहास की प्रोफेसर हैं, और मतलब अपने विषय की दुनिया की सबसे बड़ी विशेषज्ञों में से एक मानी जाती हैं।
उनके काम में ना एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो है उनका नजरिया।
किस तरह का नजरिया?
वो इतिहास को सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी की तरह नहीं देखती, वो आम लोगों की जिंदगी में झांकती हैं। किसान, व्यापारी, औरतें, कि वो अपनी दुनिया को कैसे देखते थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं।
हाँ, ये जमीनी स्तर से इतिहास को देखना होगा।
बिल्कुल।
और उनकी एक और खासियत है, ईसाई यहूदी संबंधों पर उनका शोध। इससे उन्हें पहचान और सहिष्णुता जैसे विषयों की बहुत गहरी समझ मिली है।
ये अक्सर इस बात से तय होता था
कि हम कौन नहीं है।
सही। तो इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो?
एक लाइन में तो रुबिन ये कह रही हैं कि मध्य युग को दो शानदार चोटियों के बीच की एक उबाऊ घाटी समझना बंद करें।
दो चोटियां मतलब?
रोमन साम्राज्य और पुनर्जागरण।
अच्छा, तो ये उन दोनों के बीच की कोई खाली जगह नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं कि ये घाटी नहीं बल्कि अपनी अलग ऊंचाइयों और गहराइयों वाली एक पूरी पर्वत श्रृंखला थी।
ठीक है, ये एक
ऐसी भट्टी थी जिसमें आधुनिक यूरोप की शक्ल गढ़ी जा रही थी।
ठीक है, तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना शुरू करते हैं।
जरूर।
सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये मध्य युग या मिडिल एज, ये नाम आया कहाँ से? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, जैसे ये किसी चीज के बीच में बस फंसा हुआ था।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये नाम मध्य युग के लोगों ने खुद को नहीं दिया था।
तो फिर
ये नाम उन्हें बाद में मिला, चौदहवीं 15वीं सदी के इतालवी विचारकों ने दिया। वो लोग खुद को क्लासिकल ग्रीस और रोम की महान संस्कृति का पुनर्जन्म यानी रेनेसांस का हिस्सा मानते थे।
अच्छा, तो अपने युग को महान बताने के लिए?
हाँ, उन्हें अपने और उस क्लासिकल युग के बीच के हजार सालों को कुछ तो कहना था,
तो उन्होंने उसे मीडियम एवं यानी बीच का युग कह दिया।
बिल्कुल, जैसे कि ये बस एक इंतजार का लंबा दौर था, जैसे इतिहास ने 1000 साल का ब्रेक ले लिया हो।
और यहीं से अंधकार युग का आइडिया निकला होगा।
हाँ, लेकिन किताब इसी धारणा को तोड़ती है। वो रोमन साम्राज्य के पतन से शुरू करती है। हम सोचते हैं जैसे किसी ने एक दिन बत्ती बंद कर दी और रोम खत्म हो गया,
पर असल में ऐसा नहीं था।
नहीं, ये एक पतन से ज्यादा एक विलय जैसा था। इसे ऐसे समझिए जैसे दो कंपनियां मर्ज हो रही हों, एक तरफ रोमन सिस्टम उसका कानून और दूसरी तरफ जर्मनिक जनजातियां की ऊर्जा,
फ्रैंक्स और गॉट्स जैसे लोग।
हाँ, और नतीजा कुछ बिल्कुल नया था, एक हाइब्रिड सभ्यता।
ठीक है, तो रोमन ढांचा बिखर रहा है, नई संस्कृतियां आ रही हैं, ऐसे में कोई गोंद तो चाहिए होगा जो इस नई दुनिया को जोड़े रखे, वो क्या था?
यही सबसे बड़ा सवाल है, और उसका जवाब है ईसाइयत।
धर्म?
सिर्फ धर्म नहीं, जैसे जैसे रोमन प्रशासन कमजोर हुआ, चर्च ने उस खालीपन को भर दिया। बिशप और मठ सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं रहे, वो एक तरह के स्थानीय प्रशासक बन गए, स्कूल, ज्ञान के संरक्षक, सब कुछ।
मतलब पूरे समाज का ढांचा ही धर्म पर आधारित था।
बिल्कुल। किताब में क्रिश्चियनडम यानी ईसाई राष्ट्र की बात है। ये कोई देश नहीं था बल्कि एक सुपर स्टेट जैसा था, एक साझा पहचान, एक साझा भाषा, लैटिन।
तो एक आम किसान के लिए इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब था?
देखिए, जीवन छोटा था, मुश्किल था, पूरी तरह से मौसम और फसलों पर निर्भर। धर्म उन्हें इस अनिश्चितता से जूझने का एक तरीका देता था। पाप, पश्चाताप, मोक्ष, ये सब उनके हर फैसले पर असर डालते थे। लेकिन फिर 14वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
अब ब्लैक डेथ की बात करें।
हाँ, प्लेग की वो भयानक महामारी, उसने यूरोप की एक तिहाई से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया।
ये इतनी बड़ी तबाही थी कि इसने समाज का पूरा रीसेट बटन दबा दिया।
रीसेट कैसे? अचानक मजदूरों की भारी कमी हो गई, तो जिन किसानों को सदियों से दबाया गया था, अब उनके पास मोल भाव करने की ताकत आ गई।
अच्छा,
वो बेहतर मजदूरी और बेहतर अधिकारों की मांग करने लगे। इस एक तबाही ने समाज की बुनियाद ही हिला दी।
ये बात इस मिथक को तोड़ती है कि समाज स्थिर था, और यही बात शायद अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है।
हाँ, ये एक और बड़ा मिथक है। रूबिन बताती हैं कि 11वीं सदी के बाद एक तरह की कृषि क्रांति हुई।
कृषि क्रांति?
हाँ, भारी हल, तीन खेत प्रणाली, पवन चक्कियों जैसे तकनीकी आविष्कारों ने खाने का उत्पादन बहुत बढ़ा दिया।
और जब पेट भरने के लिए ज्यादा अनाज होता है तो आबादी बढ़ती है, और लोग खेती के अलावा दूसरे काम भी कर सकते हैं।
ठीक यही हुआ। शहरों का तेजी से विकास हुआ, एक नया वर्ग उभरा, व्यापारियों और कारीगरों का। और ये बात तो मुझे सच में चौंकाती है कि बैंकिंग, क्रेडिट, बीमा,
ये सब तब भी था।
हाँ, वेनिस और जेनोआ जैसे शहर सिल्क रोड के जरिए चीन और भारत तक के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क के केंद्र बन गए थे।
मतलब ग्लोबलाइजेशन कोई आज की चीज नहीं है?
बिल्कुल नहीं।
ये सुनकर तो राजनीति के बारे में भी जानने की उत्सुकता हो रही है। क्या तब सिर्फ राजाओं का हुक्म चलता था?
नहीं, राजनीति बहुत ज्यादा जटिल थी। सत्ता हमेशा तीन ताकतों के बीच एक खींचतान थी।
कौन सी तीन ताकतें?
राजा, शक्तिशाली सामंत यानी नोबल्स, और चर्च। कोई एक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था, और इसी खींचतान से कुछ बहुत ही आधुनिक चीजें निकली।
एक मिनट, खींचतान से आधुनिक चीजें कैसे निकल सकती हैं? मुझे लगा था कि सत्ता की लड़ाई से तो सिर्फ अस्थिरता आती है।
बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संसद का जन्म। जब इंग्लैंड के राजा को युद्ध के लिए पैसा चाहिए होता था, तो वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था।
उसे सहमति लेनी पड़ती थी।
हाँ, सामंतों और शहरों के अमीर व्यापारियों की। इसी जरूरत से प्रतिनिधि सभाएं बनी, और यहीं से यह विचार पैदा हुआ कि शासक को शासित की सहमति लेनी चाहिए।
वाह, ये तो पश्चिमी लोकतंत्र की नींव का पहला पत्थर था।
बिल्कुल।
अब उस मुद्दे पर आते हैं जो अंधकार युग की धारणा पर सबसे जोरदार हमला करता है, ज्ञान और कला। क्या वो सच में एक बौद्धिक रेगिस्तान था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस युग ने हमें एक ऐसा संस्थान दिया जो आज भी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है।
आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं?
हाँ, बलोगना, पेरिस, ऑक्सफोर्ड, इन सब का जन्म मध्य युग का एक अनोखा और क्रांतिकारी आविष्कार था।
लेकिन एक आम धारणा है कि चर्च हर नई सोच को दबा देता था, तो फिर ये विश्वविद्यालय इतने खुले विचारों वाले कैसे हो सकते थे?
ये एक विरोधाभास लगता है, पर था नहीं। उस दौर में एक बौद्धिक आंदोलन चला जिसे स्कोलास्टिसिज्म कहते हैं।
स्कोलास्टिसिज्म?
हाँ। उनके सामने एक पहेली थी, एक तरफ बाइबल और ईसाई आस्था है, दूसरी तरफ अरस्तु का ग्रीक तर्क। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं?
यानी आस्था बनाम तर्क की लड़ाई।
हाँ, लेकिन थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने कहा कि ये दुश्मन नहीं है, ये एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। उन्होंने तर्क को ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा माना।
अच्छा, ये टकराव नहीं बल्कि एक संवाद था।
एक जबरदस्त संवाद। और कला की बात करें तो हमें सिर्फ गॉथिक कैथीड्रल को देखने की जरूरत है।
हाँ?
बिना कंप्यूटर या आधुनिक मशीनों के उन्होंने सिर्फ गणित और पत्थर से इतनी ऊंची और रोशन इमारतें कैसे बना दी? वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वो पत्थर में धर्मोपदेश थीं।
पत्थर में धर्मोपदेश मतलब अपनी रंगीन कांच की खिड़कियों और मूर्तियों से बाइबल की कहानियां सुनाती थीं।
बिल्कुल।
ये तस्वीर तो बहुत रोशन है, लेकिन क्या इसका कोई स्याह पहलू भी था?
हाँ, और किताब इस पर भी खुलकर बात करती है। मध्ययुगीन समाज ने अपनी पहचान सिर्फ इस आधार पर नहीं बनाई कि हम कौन हैं, बल्कि इस पर भी कि हम कौन नहीं हैं।
दूसरे को परिभाषित करके।
हाँ, एक बाहरी अन्य था मुस्लिम दुनिया। धर्मयुद्ध में उनसे खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन साथ ही व्यापार और ज्ञान का जबरदस्त आदान प्रदान भी हुआ।
और एक आंतरिक अन्य भी था।
हाँ, यहूदी समुदाय। वे पूरे यूरोप में अल्पसंख्यक के तौर पर रहते थे। उन्हें अक्सर समाज के हाशिए पर रखा जाता था, और जब भी कोई संकट आता जैसे ब्लैक डेथ, तो उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाता था।
तो उस दौर में गहरी आस्था के साथ साथ क्रूर असहिष्णुता भी मौजूद थी।
हाँ, दोनों साथ साथ मौजूद थे।
तो इस पूरी चर्चा से जो बड़े संदेश निकल कर आ रहे हैं, उनमें से पहला तो यही है कि अंधकार युग एक बहुत बड़ा मिथक है।
बिल्कुल, ये नवाचार का दौर था।
दूसरा संदेश मेरे हिसाब से ईसाइयत के केंद्रीय भूमिका है। वो सिर्फ धर्म नहीं था बल्कि समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम था।
सही कहा। तीसरा, ये ठहराव का नहीं बल्कि लगातार बदलाव का योग था। समाज हमेशा बदल रहा था।
और चौथा जो मुझे बहुत आकर्षक लगा वो ये कि ये दुनिया एक ही समय में बहुत स्थानीय और बहुत वैश्विक थी।
हाँ, एक किसान अपने गांव में जीता था, पर चर्च के जरिए वो रोम से जुड़ा था और व्यापार के जरिए चीन से।
किताब में कुछ विचार वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे रूबिन का ये तर्क कि मध्य युग दो चोटियों के बीच की घाटी नहीं बल्कि अपनी अलग ऊंचाइयों और गहराइयों वाली एक पर्वत श्रृंखला थी।
इस एक लाइन में बहुत कुछ छुपा है। इसका मतलब है कि हमें उस युग को उसकी अपनी शर्तों पर आंकना चाहिए,
उसे रोमन या पुनर्जागरण के पैमाने से नहीं तोलना चाहिए।
बिल्कुल, उसकी अपनी चोटियां थीं, विश्वविद्यालय, संसद, गॉथिक कैथेड्रल, ये सब उसकी अपनी उपलब्धियां थीं।
एक और विचार है जो मुझे बहुत पसंद आया। मध्ययुगीन शहर यूरोप का सबसे बड़ा आविष्कार था
और जिसने स्वतंत्रता, समृद्धि और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के नए रूप बनाए, ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ, ये हमें बताता है कि आज के शहरी जीवन, नागरिक स्वतंत्रता, इन सब की जड़ें कितनी गहरी हैं।
सामंती व्यवस्था में तो आप अपनी जमीन से बंधे थे, लेकिन शहरों ने एक नई संभावना दी।
तो इस सब ज्ञान का हमारी आज की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इससे क्या सीख सकते हैं?
मुझे लगता है पहली सीख है अपनी संस्थाओं की जड़ों को समझना। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या संसद की बहस देखते हैं, तो हम असल में उन विचारों को जी रहे होते हैं जिनकी नींव मध्य युग में रखी गई थी।
दूसरी सीख है ऐतिहासिक लेबल्स पर सवाल उठाना। अंधकार युग जैसा आसान सा लेबल हमें सोचने से रोकता है।
हाँ, ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है।
और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है,
वो है अन्य बनाने और बलि का बकरा बनाने के खतरों को समझना। जिस तरह यहूदियों के साथ व्यवहार किया गया, वो हमें आज के राष्ट्रवाद और विदेशी द्वेष के खतरों के बारे में चेतावनी देता है।
मेरे लिए इस चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता।
सही बात है।
मध्य युग विरोधाभासों से भरा था, गहरी आस्था और क्रूर हिंसा, शानदार बौद्धिकता और अंधविश्वास, सब एक साथ।
और यही जटिलता इसे इतना मानवीय और दिलचस्प बनाती है।
और आपके लिए सबसे पसंदीदा पहलू क्या रहा?
मेरे लिए यह जानना कि जिसे हम आज ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसका एक पुराना संस्करण तब भी मौजूद था। व्यापार के रास्ते, विद्वानों की एक आम भाषा, इन सब ने उस दुनिया को आपस में जोड़ा हुआ था।
तो अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे।
जरूर।
अगर मध्ययुग वाकई हमारी आधुनिक दुनिया की नींव है, जिसमें हमारी संसद और विश्वविद्यालय जैसी महान संस्थाएं शामिल हैं, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि हमारी आज की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियाँ,
जैसे असहिष्णुता या आर्थिक असमानता,
हाँ, या आस्था और तर्क के बीच का तनाव, क्या इन सब की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।